आज हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जो आर्य समाज के स्वामी दयानंद के बाद जिन्होंने पूरे आर्य समाज का जो आंदोलन है, जो उनके जो कार्य है उसको उन्होंने पढ़ाया, स्वामी श्रद्धानंद जी। पिछले 23 तारीख को उनका देहांत दिवस था, श्राद्ध दिवस था। थोड़ी बहुत चर्चा आज उन पर करेंगे। जब हम महापुरुषों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और खास करके उस संगठन के बारे में भी थोड़ी जानकारियां मिलती हैं। जब 19वीं शताब्दी में, 19th century में जो बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मेशन चल रहे थे, तो उन दिनों काफ़ी सारे महापुरुष अलग अलग क्षेत्रों में आए। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, बहुत सारे तो ऐसे थे जो कंबाइंड थे, धार्मिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, हर तरह के आंदोलन में भागीदार लेने वाले। तो उन्हीं में से एक स्वामी श्रद्धानंद हुए, जिनका मूल नाम तो मुंशी राम था। जब संन्यास ग्रहण किया वो श्रद्धानंद बने। नारी शिक्षा से लेकर विधवाओं के विवाह, जो अछूत थे, अनटचेबल थे, उनके उत्थान के लिए जो हमारे प्राचीन भारत में जो गुरुकुल ट्रेडिशन था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसको रिवाइव करने में, और जो हिंदू किसी कारण से अलग अलग धर्मों में चले गए थे पर वहाँ वो ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में ये कन्वर्शन, रिकन्वर्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम तो हमारे जो खास करके ट्रेडिशन है कि जो हमारे हैं उनको भी हम अलग करते हैं, शूद्र के नाम पर, छोटे जात के नाम पर हम उनको ही अलग कर देते हैं। पर स्वामी श्रद्धानंद ने एक यूनिक एक चेष्टा की कि जो हमारे भाई बहन किसी कारण से दूसरे धर्म में चले गए उनकी मर्जी के खिलाफ, उनको दोबारा अपने धर्म में लाने की जो जो शुद्धि आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तो इस तरह के बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने शुरुआत की, भागीदारी की, और आखिर आर्य समाज के ज्यादातर जो जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी दशा होती है वही उनकी दशा हुई, उनको भी मार दिया गया गोली से। तो उन थोड़ी बहुत चर्चा आज ऐसे एक महापुरुष के बारे में हम करेंगे। अगली स्लाइड में, फ़रवरी 22, 1856 को, 1856 को पंजाब के जालंधर में पैदा हुए, तलवान गांव में, और उनके जो पिताजी थे जिनका नाम था मुंशी राम, और उनके पिताजी लाला नानक चंद जी, वैसे तो पोलिश ऑफिसर थे उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उनकी जो जो नौकरी थी वो यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आजकल अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो ब्रिटिश राज में उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, तो वहीं पर उनकी नियुक्ति थी। पुलिस नौकरी में थे तो ट्रांसफर होता रहता था अलग अलग शहरों में, तो उनका बच्चा भी उनके साथ अलग अलग शहरों में उनका ट्रांसफर होता रहता था, अलग अलग स्कूलों में पढ़ता था। मुंशीराम बेसिकली बड़े नास्तिक थे, खाली नास्तिक नहीं थे, मतलब उनको किसी ईश्वर पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है श्रद्धा का, वो जो रिलीजियस एक्टिविटीज है उनसे भी बड़ा उनको नफरत था। जैसे कि आज आजकल भी आप देखते हैं नई पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता है कोई चीज, फिर व्यक्ति धीरे धीरे नफरत करने लगता है, दूर हो जाता है। मुंशीराम भी उसी तरह के व्यक्ति थे, और वो शराब पीना, बदमाशी करना, सभी चीजों में वो इन्वॉल्व रहते थे, और इस तरह वो पढ़ाई उनकी चलती थी। उन्होंने वकालत भी किया उन दिनों, वो वकील भी बने, लाहौर में काफी सालों तक उन्होंने वकालत किया। और पर धीरे धीरे उन्होंने एथेइज्म को, नास्तिकता को अपना लिया और एक बड़े कट्टर थिस्ट बने। उनको किसी धर्म चीजों में रुचि नहीं थी। उनके जीवन में बदलाव आया, अगली स्लाइड में, जब बरेली में उनके पिताजी की पोस्टिंग हुई थी और स्वामी दयानंद जी का वहां प्रवचन था, और उनके पिताजी की ड्यूटी थी, क्योंकि वो उस प्रवचन में बहुत सारे लोग आते थे, अंग्रेज के जो ऑफिसर्स भी आते थे, तो अलग अलग धर्म के लोग आते थे, जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, आम लोग भी, हर तरह के लोग आते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए उनके पिताजी की ड्यूटी लगा करती थी। तो उसको कहते थे, मुंशीराम को भी उन्होंने बोला, तुम प्रवचन सुनो ना सुनो, कम से कम इतने बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, बाकी लोग, तो थोड़ा जाओगे तो जान पहचान होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से मंदिर या धार्मिक संस्थाएं जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं इसी बहाने, सोशलाइजेशन होता है, लोगों से जान पहचान होता है, आगे आकर काम आता है। तो इसी तरह मुंशीराम को भी उनके पिताजी भेजा करते थे कि भाई चलो देखो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके बीच में बैठोगे, किसी से जान पहचान होगा, कुछ सुधरोगे। तो मुंशीराम इसीलिए आए थे। पर जब उन्होंने स्वामी जी का प्रवचन सुना, वो जो लॉजिक के साथ हमारे धर्म की, और आपको पता है ब्रिटिश टाइम में हजार सालों की जो गुलामी के कारण हिंदुओं में एक तरह की जो जो, जो हीन भावना, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया था, जो कि आज भी लाखों करोड़ों हिंदुओं में ये कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स सिर्फ इसीलिए कि हम अपने धर्मों को कभी ना पढ़ते हैं ना जानते हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में सुन सुन के हमें कॉम्प्लेक्स होता है। और उन दिनों बहुत मात्रा में था, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी की जो प्रचार था, मुसलमानों के जिस तरह के प्रचार थे, हिंदू लोग अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं थे, सिर्फ दादा परदादा के, बाप दादा परदादा से जो चलता आ रहा है उठपटांग हरकतें धर्म के नाम पर, उसके अलावा उनको और कुछ पता नहीं था। उनको लगता था यही करने से भगवान खुश होता है और कुछ नहीं। जब कोई दूसरे धर्म वाले लोग उनको आक्षेप करते थे, उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, तो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में और बड़े इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ ज़्यादातर हिंदू लोग जीने के लिए मजबूर होते थे, और आज भी बहुत होते हैं जो इस तरह की चीज खुद के बारे में जानना नहीं जानते। तो मुंशीराम उसी तरह के थे। और स्वामी जी का विचार हर जगह जो होता था वो बड़े दमदार होता था, बड़े लॉजिकली वो प्रूव करते थे जो जो अच्छाइयाँ है, और जो बुराइयाँ है उसको भी खुलेआम बोलते थे। अपनी बुराई को छुपाते नहीं थे, ना किसी दूसरे की बुराई को छुपाते थे, और अच्छाइयाँ जो हमारे हैं दूसरे में सबको बताते थे। तो मुंशीराम को थोड़ा प्रभावित हुए, एक अलग तरह का माहौल, एक बाबा को उन्होंने पहली बार देखा। ज़्यादातर आप देखेंगे, वो आज भी आप देखेंगे, आर्य समाज में जब आते हैं, जो दूसरे जगह जाते हैं, आपको एक अलग तरह के मिलेगा। तो बड़े अजीबोगरीब तरह के लोग आपको मिलते हैं आर्य समाज में, क्योंकि वो नहीं बोलते हैं जो आप जिंदगी भर हम सुनते आ रहे हैं, ये फर्क है। तो स्वामी जी के विचार सुनने के बाद उनको थोड़ा हल्का फुल्का झटका लगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके साथ बहस करूं। और वो जितने दिन स्वामी जी वहां रहे, 8-10 दिन 15 दिन, तो वो उनसे मिलने जाते थे, अलग से काफी बहस करते थे, अलग अलग चीजों पर सवाल पूछते थे। तो स्वामी जी के विचारों से, उनके जो चरित्र से, उनके हाव भाव से, सचमुच मुंशीराम के जीवन में एक परिवर्तन आया, और वो धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन बढ़ने लगा, आकर्षण बढ़ने लगा, और इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि मुंशीराम में सचमुच वो परिवर्तन आया। वो जो नास्तिक था, शराबी था, और बहुत सारे असामाजिक कार्यों में जुड़ने वाला व्यक्ति था, उसके जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कुछ साल तक नौकरी की, वकालत किया, पर छोड़ छाड़ करके समाज सेवा में जुट गए। और जो मुंशीराम समाज सेवा में जुड़े अपने काम धंधा छोड़ करके, तो जो सबसे पहला काम उन्होंने जो शुरू किया, उसकी अगली स्लाइड देखेंगे। लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले शुरू की, मूवमेंट को प्रमोट किया। और क्योंकि अपने घर में जो उनकी खुद की बेटी थी वेद कुमारी, आपको पता है उन दिनों बहुत कम स्कूल तो वैसे ही कम होते थे, लड़कियों को पढ़ा छोड़ा नहीं जाता था स्कूलों में, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं था। और कुछ मिशनरी स्कूल्स होते थे जहां लड़कियों को पढ़ाया जाता था, तो उन दिनों के जो मिशनरी स्कूलों में बड़ी कोशिश होती थी, वो आज भी होती है पर चोरी छुपे होती है, पर उन दिनों खुलेआम होता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार था कि व्यक्ति जो स्कूल में आता है उसको कन्वर्ट करने की जितनी कोशिश किया जा सके, क्रिश्चियन कल्चर उसको सिखाया जा सके, सिखाया जाता था। और हिंदू लोग अपने घर में अपने बच्चों को हिंदू कल्चर के अच्छाई या बुराई के बारे में कुछ बताते नहीं है, ना पहले बताते थे ना आज। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो भाग्यवान है, कभी कभी अपने देश से दूर होने पर हमें अकल आता है। तो यहाँ तो बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को जरूर कोशिश करते हैं कुछ सिखाने के लिए, पर जो मूल देश में अभी भी हैं वो उनको उसकी फिक्र नहीं है। तो जब देखा कि उनकी बेटी को जब उन्होंने स्कूल भेजा और स्कूल से कुछ सालों के बाद देखा कि उसकी जो माइंडसेट बदल रहा है, एक अलग अजीबो किस्म की सोच और विचार लेकर आता है, तो उनको लगा नहीं हमारे देश में अपनी देसी स्कूल भी होना चाहिए जहाँ हमारे लड़के लड़कियाँ पढ़ सकें, हमारी चीज़ों को जान सकें। तो उन्होंने तो लड़कियों के स्कूल को शुरू करना आरंभ किया। दूसरा जो उनका एक बड़ा योगदान था, उसके बाद वो लाहौर छोड़ करके, वैसे तो शुरू में उन्होंने एक गुरुकुल खोला गुजरों, ये गुजरांवाला वेस्ट पंजाब में, जो आजकल पाकिस्तान में है, 1900 में, मई 60 में, तो पहला गुरुकुल खोला। अब गुरुकुल क्या है, तो रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम जो प्राचीन काल में पारंपरिक जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जहाँ गुरु शिष्य सब एक ही जगह रहना जरूरी होता था, वो 8 घंटे की 6 घंटे की पढ़ाई नहीं, वो 24 घंटे की माहौल में बच्चे और शिक्षक एक ही जगह रहते थे और वहाँ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल पढ़ाई साथ साथ चलती थी। वहाँ सिर्फ जो 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 वोकेशनल एजुकेशन नहीं, जीवन को जीने के लिए और जितने तरह की कलाएं हो सकती हैं सब सीखते थे। और क्योंकि स्वामी दयानंद इस जो प्राचीन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, उसको रिवाइव करने के लिए वो बोलते थे, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर के स्वामी जी भी चाहते थे कि गुरुकुलों की परंपरा दोबारा शुरू हो। और सब स्वामी दयानंद ने खुद भी काफी सारे दो चार गुरुकुल अलग अलग जगह उन्होंने खोलने की कोशिश की, पर वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि वो बिल्कुल परिव्राजक थे। परिव्राजक का मतलब घूमने फिरने वाले सन्यासी, फकड़ आदमी थे, एक जगह टिकते नहीं थे। और उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में दिमाग का परिवर्तन लाना, जो बुद्धि के परिवर्तन लाना, इसलिए उनको हर जगह जाना होता था लोगों से। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का मतलब जिसको आजकल आप कह सकते हैं डिबेट, बड़े बड़े पंडितों से ज्ञानियों से उनको शास्त्रार्थ करना होता था, डिबेट करना होता था वो अपने जो हिंदुओं के पंडितों से, चर्च पादरियों से, मौलवियों से, फिर लोगों के प्रचार करना होता था, उनको किताबें लिखनी होती थी। तो वो एक जगह तो टिक नहीं सकते थे, जो भी दो चार जगह उन्होंने गुरुकुल खोला, टीचरों को लाकर रखा, पंडितों को, विद्वानों को, पर वो ठीक किताबें पढ़ाने वाले तो मिल जाते थे, पर जो स्वामी जी चाहते थे जो विचार लोगों तक पहुंचे वो बड़ा मुश्किल होता था। तो स्वामी जी गुरुकुल स्थापना में बड़े सफल विफल रहे स्वामी दयानंद जी, जितने बार गुरुकुल खोले मजबूरन उनको बंद करना पड़ा। तो स्वामी श्रद्धानंद उसको रिवाइव करने के लिए प्रण लिया और उन्होंने सबसे पहले गुजरांवाला पाकिस्तान में खोला। और 2 साल के बाद जब वो फिर वापस आ गए जालंधर की तरफ, तो उन्होंने हरिद्वार में जो जो कांगड़ी एरिया है, तो वहां पर उन्होंने अपना एक गुरुकुल सबसे पहले स्थापित किया। क्योंकि ये बड़ा अजीबोगरीब घटना है। अब गुरुकुल क्या होता है, ठीक है, जो हमारी समस्या है कि हम अपनी चीजों को बहुत कम जानते हैं। अब हिंदुस्तानी लोगों के लिए बड़ा अजीब बात थी, गुरुकुल क्या चीज होता है। अब कोई बच्चा भेजने को तैयार नहीं, ये क्या गुरुकुल, क्या चीज है क्या नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले खुद टीचर बने, अपने दोनों बेटों को गुरुकुल में डाला और वो खुद पढ़ाने लगे। अपने बेटे और खुद बच्चे उनके शिष्य थे और खुद टीचर थे। धीरे 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 बच्चे आने लगे, वो खुद टीचर रहे, उनको देख करके दूसरे लोग भी आने लगे। और वो गुरुकुल इतना ज्यादा फैला, आजादी के बाद तो उसको यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली, आजादी से पहले भी मिली। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो सबसे पहले उस गुरुकुल कांगड़ी में ही ठहरे थे। और वो गुरुकुल उनके लिए भी एक नई घटना थी, इस तरह के ब्रह्मचारी, उनको गुरुकुल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये ब्रह्मचारी चोटी रख करके, साखा पहन करके, पूरे सुबह से रात तक जो उनकी डेली रूटीन होता है प्राचीन काल के गुरुकुल के परंपरा के हिसाब से, कैसे केवल पढ़ना लिखना नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज, कुश्ती, कसरत, खेलने से लेकर हर तरह के एक्टिविटीज में तो बड़े प्रभावित रहे। वैसे स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी काफी साथ साथ काम किए, वो अलग बात है कि स्वामी जी और महात्मा गांधी के विचारों में बड़ा फर्क था, काफी सारे चीजों में मतभेद था और बाद में दोनों अलग भी हो गए, पर तब भी श्रद्धानंद जी के जीवन भर तक और जीवन के बाद भी महात्मा गांधी का उनके प्रति एक एक अलग सम्मान था, मतभेद होने के बावजूद भी। और वो गुरुकुल, उन दिनों में जो गुरुकुल उन्होंने कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापित की, ये जरूरी नहीं कि वहां सिर्फ वो संस्कृत या वेद पढ़ाते थे, हर तरह के विषय, वो जो जो भी मॉडर्न सब्जेक्ट होते थे उसके साथ साथ जो भी एंशियंट सब्जेक्ट थे सब पढ़ाया जाता था। और उसका परिणाम हुआ आजादी के बाद और उससे पहले के आसपास करीब 30-40-50 साल तक इतने इशारे उस कांगड़ी के जो स्नातक निकले, ग्रेजुएट निकले, नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर क्षेत्रों में वो जर्नलिज्म हो, पत्रकारिता हो, एजुकेशन में जाएं, वो सोशल सर्विस में जाएं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएं, आपको वेदालंकार, विद्यालंकारों का भरमार मिलता था। ये कांगड़ी की डिग्रियों का नाम होता है, विद्यालंकार और वेदालंकार। बाद में स्वामी जी ने उसकी सफलता देख करके अलग अलग जगह भी और भी गुरुकुल खोले। दिल्ली के अरावली के पास एक इंद्रप्रस्थ में भी गुरुकुल खोला। 1917 में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली, उससे पहले उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा ली, महात्मा मुंशीराम कहलाए, बाद में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और वो स्वामी श्रद्धानंद बने। श्रद्धानंद सन्यासी का काम होता है कि जब आप सन्यास ले लेते हैं फिर आपके पिछले कर्मों के साथ, पिछले संबंधों के साथ फिर आपका कोई रिलेशन नहीं होता, आपको सब छोड़ना होता है। तो स्वामी जी गुरुकुल भी छोड़ दिया सन्यास लेने के बाद, फिर वो दिल्ली में स्थायी रूप से आ गए दिल्ली में और सामाजिक कार्यों में अपने आप को समर्पित किया। और उन दिनों महिलाओं के उद्धार के आंदोलन में जो अनटचेबिलिटी की भरमार थी, अछूत लोग, जो अछूत की इसको छूने से पाप होता है, वैसे तो इन दिनों काफी सामाजिक जागृतियां आ चुकी थी कि जो अछूत लोग तथाकथित अछूत थे, अनटचेबल जिनको माना जाता था, उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके भलाई के लिए काफी सारे संस्थाएं जो उन दिनों कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई में थी, जो दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, काफी शोर मचाते थे, पर कभी कोई ठोस एक्टिविटीज किसी के द्वारा नहीं हुआ करता था। जो स्वामी जी के द्वारा जो गुरुकुल मूवमेंट चला, आज भी आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश लेकर ये जो नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में आज भी आर्य समाज के करीब 200-250 गुरुकुल चलते हैं। और वो गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वेद शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, पूरी तरह जो प्राचीन काल के जो ब्राह्मण व्यक्ति का जो 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 शिक्षा है, जो चरित्र है, उसी तरह उनको जीना होता है। वही गुरुकुल के बच्चे आगे निकल करके पुरोहित भी बनते हैं, पंडित भी बनते हैं। पर आपको आश्चर्य होगा, उनमें से 80% जो 80% जो बच्चे होते हैं वो हरिजन परिवार के होते हैं, आदिवासी परिवार के होते हैं, अछूत परिवार के होते हैं, और उन्हीं गुरुकुलों में पढ़ करके फिर वो ब्राह्मण बनते हैं, वो पूजा पाठ करने दूसरों के घर में भी जाते हैं, वो वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, जो आज भी भारत में बहुत सारे जगह ये सुनने में बड़ा मुश्किल है। तो ये जो स्वामी जी, स्वामी श्रद्धानंद जी की जो कल्पना थी कि ये गुरुकुलों की सिस्टम को रिवाइव किया जाए और उसको बढ़ाया जाए, उसमें जो जो लक्ष्य था कि प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था को रिवाइव करना, वो तो अलग बात है। सबसे बड़ा जो फायदा मिला कि जिनको हम अछूत मानते थे, जिनको हम हरिजन मानते थे, अलग अलग संस्थाओं ने उनके लिए क्या किया ये नहीं पता, पर आर्य समाज ने उनको उस स्थान पर लिया स्वामी श्रद्धानंद जी के परिश्रम से, कि जो जो वर्ग उनको हीन समझता था वो उसी वर्ग में पहुंचे, उन्हीं के श्रेणी में वो ब्राह्मण कहलाने लगे। उन्होंने हिंदी की प्रचार के लिए, हिंदी जो उर्दू में लिखी जाती थी उसको हिंदी लिपि में लिखना शुरू किया, अखबारें भी छापी उर्दू में, तेज, हिंदी में अर्जुन, आज भी दिल्ली में वीर अर्जुन नाम का अखबार छपता है। तो पत्रकारिता में भी उन्होंने काफी काम किया। और आजादी के आंदोलन में भी जुड़े। अगली स्लाइड में चलेंगे। उन दिनों 1919 में करीब, जब वो अमृतसर में जलियाना बाग में जनरल डायर ने हजारों बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को गोलियों में भून डाला, मार डाला, पूरे देश में तनाव भरा हुआ था और लोग डरे हुए थे, ब्रिटिश सरकार से भी डरे हुए थे, ब्रिटिश सरकार पब्लिक से डरा हुआ था, पूरे देश में एक तरह के भय का माहौल था, कहीं कोई दंगा ना हो जाए, कोई विद्रोह ना हो जाए, हर तरह की परेशानी। उस साल अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, सेशन होना था, और कांग्रेस में हिम्मत नहीं थी, मतलब क्योंकि माहौल खराब था, अमृतसर का जो माहौल है बड़े बड़े उत्तेजना था, तो दंगा होने की चांस थी, तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। स्वामी श्रद्धानंद ने ये खुद पर जिम्मेदारी ली। अमृतसर में जलियाना बाग घटना के बाद भी उन्होंने अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन कराया, खुद उसके स्वागत चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने, सभापति बने, और बड़े सफलता के साथ वो अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन में उन्होंने ये जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक बिल भी पास कराया, एक प्रस्ताव भी पास कराया, और वो बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। अमृतसर का अधिवेशन जलियाना बाग घटना के बाद हुआ। ये स्वामी श्रद्धानंद जी की जो वीरत्व है, वो सिर्फ सन्यासी नहीं थे, उनके अंदर जो वीरता थी, जो एक हिम्मत था लड़ने के लिए, वो आपको देखने को मिलता है। अगली स्लाइड में चलेंगे। इसी तरह जब अंग्रेजों ने जब पूरी तरह वो एक नया कानून लाए, उसको आप कहते हैं रॉलेट एक्ट, जिसमें इमरजेंसी जारी कर दी, मार्शल आर्ट जारी कर दिया, एक्ट जारी कर दिया कि कोई मीटिंग नहीं हो सकती, कोई आंदोलन नहीं हो सकता, जो पकड़ा जाए उसको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसके खिलाफ पूरे देश में बड़ा बड़ा गुस्से का माहौल था। श्रद्धानंद सन्यासी थे, वेद के धर्म के प्रचार के लिए, उसके बावजूद भी वो आज़ादी के लड़ाई में जितना उनसे हो सकता है, क्योंकि वो बड़े नीडर किस्म के व्यक्ति थे जो बहुत कम मिलते हैं, और वो दिल्ली में उस जो अंग्रेज सरकार के उस एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसको उन्होंने लीड किया। जो बयान लगा हुआ था कि कोई भी प्रोसेशन नहीं हो सकता दिल्ली में, कोई लोग जैसे आजकल उसको कहते हैं 144 की एक्ट होता है कि दो से ज्यादा लोग एक साथ मिल नहीं सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते। स्वामी श्रद्धानंद चांदनी चौक के चौक पर हजार हजार लोगों के भीड़ के नेतृत्व किया और वहां भाषण भी दिया और प्रोसेशन किया। जो ब्रिटिश सेनाओं के सोल्जर ने उनको रोकने के लिए, और क्योंकि और वो कमांड सरकार के कमांड पर गोली चलाने के लिए तैयार हुए, तो श्रद्धानंद को पता चला कि पब्लिक को गोली चलाने के लिए तैयार हैं। सन्यासी थे, दौड़े दौड़े सामने आए, सामने आकर के अपने सीने के बटन खोल दिया, कुर्ते की बटन खोल करके खड़े होकर दिखाया कि अगर गोली मारना है तो पहले मुझे मारो, फिर पब्लिक को मारना, क्योंकि नेताओं को मारना बड़ा मुश्किल काम होता था उन दिनों लीडरों को। तो सरकार वहां दब गई और वापस चले गए। तो एक सन्यासी होने पर भी, और उसके कारण से उस घटना के बाद वो जो आजादी के आंदोलन, खास करके जो दिल्ली में, तो इतने लोग उनको उनके साथ जुड़ गए, उनकी जो नीडरता के प्रशंसक बने, और उसके कारण उनको जामा मस्जिद में, जो कि भारत में सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है मुसलमानों का दिल्ली में, जो पुरानी दिल्ली में, और जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स भी वहीं से शुरू होती है, और उनके लिए बहुत प्रसिद्ध, बड़ा पवित्र और बड़ा फेमस जामा मस्जिद है। इतिहास में पहली बार, शायद आखिर बार, कोई हिंदू, वो भी सन्यासी को उन्होंने बुलाया अपने मस्जिद में प्रवचन देने के लिए, और वो स्वामी श्रद्धानंद थे। और सिर्फ उन्होंने प्रवचन नहीं दिया, वो मस्जिद में, वो भी जामा मस्जिद में, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ, वो भी ऋग्वेद के मंत्र के ओम के उच्चारण के साथ, ओम वो मंत्र था ऋग्वेद का, ओम त्वमीना पिता वसो त्वम माते सतक्रतो बहुविता अगते सुमनिमी मही, ऋग्वेद के मंत्रों के साथ उन्होंने प्रवचन दिया, और सारे हजार हजार मुसलमान जामा मस्जिद में शांति से सुन रहे थे। और अपने प्रवचन के बाद ओम शांति ही शांति ही शांति बोला और लोगों ने आमीन कह करके उनको एक्सेप्ट किया। ये जो नजारा है हिंदू मुसलमानों की जो कि आप अपने धर्म में धर्म को मानते हुए भी दूसरे धर्म के प्रति जो सम्मान है, और जब आप उस नजरिए से जाते हैं तो दूसरे धर्म वाले की भी आमीन के साथ आपको आपके ओम को वो आमीन के साथ सप्लीमेंट करते हैं, आपके विरोध नहीं करते हैं। ये हिम्मत वो स्वामी श्रद्धानंद में था, शायद पहली बार और आखिर बार है भारत के इतिहास में जामा मस्जिद में कोई हिंदू व्यक्ति ने प्रवचन दिया, वो भी किसी सन्यासी ने, वो भी वेद मंत्रों के साथ दिया। वो स्वामी श्रद्धानंद जी का जो व्यक्तित्व है वो उसको झलकाता है। स्वामी जी का एक और एक जो योगदान है जिसके बाद हम समाप्त करने जा रहे हैं, शुद्धि आंदोलन, ये मोमेंट ऑफ रिकन्वर्शन ऑफ कन्वर्टेड हिंदू, ये तब ज्यादा स्पीड पकड़ा जब ये आगरा मथुरा के पास वेस्टर्न यूपी में 5 लाख करीब मलखाना राजपूत नामक एक कौम था जो मुगलों के समय जबरदस्ती मुसलमान तो बन गए थे, पर आज भी वो मुसलमान तो होते थे पर उन दिनों मुसलमान के बाद भी उनकी जो एक्टिविटीज है वो हिंदुओं की तरह वो पूजा पाठ करना बहुत सारा करते थे। आज भी आप देखेंगे राजस्थान में, हरियाणा में, मेरठ साइड में ऐसे कुछ मुसलमान लोग हैं जो नाम तो उनका मुसलमान है पर बहुत सारे जो एक्टिविटीज उनका वो हिंदू के, मतलब वो अभी तक पूरी तरह मुसलमानियों को एक्सेप्ट, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे 5 लाख करीब लोग थे जिनकी इच्छा थी कि हम वापस हिंदू में जाएं, पर आपको पता है हिंदू धर्म में हमेशा ताला बंद होता है, जा सकते हो पर आ नहीं सकते हो। हमारे धर्माचार्यों का बस चले सभी हिंदुओं को बाहर कर दे और ताला लगा दे कि कोई हिंदू नहीं है, कोई दूसरे को आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो श्रद्धानंद ने यह हिम्मत दिखाया, वैसे उन दिनों शुद्धि आंदोलन का कंसेप्ट चला पर कोई हिम्मत नहीं कर पाता था क्योंकि हिंदुओं में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था कैसे उनको लाए। तो उन्होंने एक संस्था बनाई हिंदू शुद्धि महासभा करके, वो उसके प्रेसिडेंट भी बने और आगरा में उनका ऑफिस खोला और बड़े तामझाम के खास वो 5 लाख जो मलखाना राजपूत थे, जो मुसलमान थे, उनको हिंदुओं में कन्वर्ट किया। और उससे जो हिंदुओं में एक जागृति आई जो कि भाई ऐसा नहीं है कि जो चला गया, कोई जो आना चाहता है उसको तो कम से कम एक्सेप्ट करे, ये हमारा एक अच्छी बात है कि हम दूसरे रिलीजन की तरह अपना एम्पायर खड़ा करना नहीं चाहते। हम बाय हुक या बाय क्रुक हमें लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना, ये कंसेप्ट हिंदुओं में कतई नहीं है, ना था ना है ना कभी होने वाला है। ये हिंदुओं की अपनी एक महानता है जो दूसरे धर्म से रिलीजन से इसको अलग करता है कि हम किसी को कन्विंस भी नहीं करते कि तो हिंदू बन, धमकाना तो ललचाना तो दूर की बात है। पर प्रॉब्लम यह है कि कोई गलती से किसी कारण से अगर दूसरे धर्म में चला गया उसको एक्सेप्ट करने भी नहीं हम नहीं करते थे। ये परंपरा को स्वामी श्रद्धानंद ने तोड़ा और इस तरह एक रास्ता खोला जिसके कारण कांग्रेस के उन दिनों कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जिनको ये पसंद नहीं था, खुद महात्मा गांधी जी को भी ये पसंद नहीं रहा, तो इसके कारण फिर वो कांग्रेस से अलग भी हो गए। पर इससे ये जो 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 शुद्धि आंदोलन चला, स्वामी श्रद्धानंद के प्रति दुश्मन भी बहुत बढ़ने लगे, अपने कौम में भी दूसरे कौम में भी बढ़ने लगे। पर बहुत सारे लोग उनके इस कारण से अपनी इच्छा से हिंदू धर्म ग्रहण किया और वो जो उनके खिलाफ विरोध चला वो इतना भयानक रूप से चला। एक वो सिंध के कराची के एक महिला थी असगरी बेगम करके, वो सिंध की है, तो उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया कि मुझे भी धर्म बदलनी है। मतलब ज्यादातर तो आपको पता है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में 80% जो मुसलमान होते हैं वो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, बाकी 10 से 15% होंगे जो अफगानी है, मुगल है, इराक, जो भी उधर से अरब से आए थे। तो वो धर्म बदल दिया, हिंदू बनी। उसके बाद उसकी जो पति है उन्होंने कोर्ट में केस किया स्वामी जी के खिलाफ, उनके बेटा इंद्रदेव विद्यावाचस्पति जो बाद में बड़े विद्वान बने, उनके दामाद सुखदेव, उन सब के खिलाफ उन्होंने केस किया। केस चला और केस क्या क्या, अबडक्शन, वो जितने तरह के केस लगाया जा सकता है उनके खिलाफ सब लगाया, पर वो कोर्ट से बरी हो गए, कुछ हुआ नहीं है। पर कुछ मुसलमान जो कट्टर थे वो उनके विरोधी बने, और एक दिन समय आया और वही उनका कारण हुआ मरने का। वो अपने घर में दिल्ली में एक दिन थे, बीमार थे, और एक अब्दुल रशीद नाम का एक व्यक्ति, जिहादी तो हमेशा बहुत सारे हर जगह होते रहते हैं, 1926 से 23 दिसंबर को उनके घर आया कि मुझे आपसे कुछ शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ मतलब कुछ चर्चा का डिबेट करना है, धर्मों के बारे में डिस्कस करना है। तो उन्होंने अपने घर पर बुलाया और वो अपने कंबल के नीचे राइफल छुपा रखा था बंदूक, उसे गोलियां दागी और स्वामी जी का देहांत हो गया। तो ये आर्य समाज की खैर परंपरा है, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम जी भी श्रद्धानंद से पहले जो थे, यहाँ कुमारने की परंपरा रही। इसके बावजूद भी जबकि महात्मा गांधी के साथ उनका मतभेद बहुत था, तब भी उन्होंने जो शब्द कहा महात्मा गांधी के शब्द में, He lived a hero and died a hero, ये जो उनकी जो ब्रेवरी है, जो उनका हिम्मत है, ये बहुत कम आर्य समाज में और बाकी जगह मिलता है कि सन्यासी, एक योद्धा, एक वीर और एक साहसी हो सकता है। 1970 में, अगली स्लाइड में चलेंगे, उनके नाम पर भारत सरकार ने एक स्टाम्प जारी किया, पोस्टल स्टाम्प, जो उन्होंने लिखा उस लाइन को मैं आपको सुना करके बात को विराम दूंगा। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1970 मार्च 30 को एक जो पोस्टल स्टाम्प जारी किया, उसने लिखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ए नोबल सोल एंड फियरलेस पेट्रियट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया, अमंग द फ्यू हु वेयर एमिनेट इन बिल्डिंग आवर नेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th was Mahatma Munshiram, known as Swami Shraddhananda, as a valiant warrior of the War of Independence. Swami Shraddhananda presents a living portrait of bravery and sacrifice. हमें गर्व है कि आर्य समाज के प्रधान रहे, आर्य समाज के कर्ता रहे। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके इस श्राद्ध दिवस पर, और ईश्वर, हम सब आशा करते हैं कि ईश्वर भी हमें शक्ति दे कि हम अपने देश के, अपने धर्म के, समाज के उन्नति के लिए तो इसी तरह हिम्मत के साथ कार्य करें। ओम शांति।